उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं, खेल संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत का ऑर्किड स्टेट कौन सा है? ऑर्किड स्टेट से आप समझ रहे होंगे कि हम उस राज्य की बात करने वाले हैं जो प्राकृतिक तौर पर बहुत सुंदर है, और सुंदरता की जब बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश का नाम स्वाभाविक तौर पर हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि हम जानते हैं प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्य है, इसीलिए भारत का ऑर्किड राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। और ऑर्किड राज्य का दर्जा होने के कारण यहाँ की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा संतुलित है। न सिर्फ जैव विविधता बल्कि ऑर्किड स्टेट होने के कारण यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी है। इसी विशेषता को पहचानते हुए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ऑर्किड मिशन की शुरुआत की है, और ऑर्किड मिशन को बढ़ावा देने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी कोशिश की जा रही है। तो आइए हमारे संवाददाता राकेश डोले की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ये ऑर्किड मिशन क्या है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस मिशन को और बढ़ावा मिलने वाला है।
अरुणाचल प्रदेश को अक्सर भारत का ऑर्किड राज्य कहा जाता है। यहाँ 600 से अधिक ऑर्किड प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भारत की कुल ऑर्किड विविधता का लगभग 40% है। इन फूलों में से कई दुर्लभ, स्थानिक और औषधीय गुणों से भरपूर हैं। ये रंग बिरंगे फूल राज्य की पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों के नीचे के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर ऊपर के हिमालयी क्षेत्रों तक प्राकृतिक रूप से उगते हैं। राज्य सरकार ने इस प्राकृतिक धरोहर को सहेजने और आर्थिक रूप देने के लिए ऑर्किड मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ऑर्किड खेती को वैज्ञानिक, व्यवसायिक और सतत आजीविका के रूप में विकसित करना है। इसी कड़ी में हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह से एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य था थाई निवेश, उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करना, जिससे राज्य में ऑर्किड की वैज्ञानिक और व्यवसायिक खेती को बढ़ावा मिल सके। मुख्य सचिव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, स्वयं सहायता समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बैठक में टिश्यू कल्चर तकनीक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल ऑर्किड क्लस्टर की स्थापना की दिशा में कार्य करने पर भी सहमति बनी। यह पहल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत की जाएगी। मुख्य सचिव का मानना है कि थाईलैंड जैसे देशों से सहयोग मिलने पर अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ऑर्किड बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। अरुणाचल के ऑर्किड अब सिर्फ जैव विविधता का प्रतीक नहीं बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास की राह बन सकते हैं। यह पहल न केवल राज्य की सुंदरता को दुनिया के सामने लाएगी बल्कि स्थानीय समुदायों को सम्मानजनक आजीविका का साधन भी देगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
अरुणाचल प्रदेश से अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में पीएम कुसुम योजना ने किसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब किसान इस योजना के जरिए ऊर्जा दाता बन रहे हैं। तो हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे ने एक खास रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि किस तरह से पीएम कुसुम योजना का लाभ लेते हुए त्रिपुरा के किसान अपने जीवन में खुशहाली तो ला ही रहे हैं, साथ ही एक ऊर्जा दाता बनकर किस तरह से समाज को भी लाभान्वित कर रहे हैं। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बीच प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना कहा जाता है, गांव और खासकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में यह योजना किसानों के हित में बहुत असरदार साबित हो रही है। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य है देश भर के किसानों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा देना। त्रिपुरा में भी इस योजना का असर साफ दिखाई दे रहा है। गांव और दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की सप्लाई बहुत कम है, वहां के किसान अब तक बंजर जमीन और कम उपज की समस्या से जूझते रहे हैं, लेकिन पीएम कुसुम योजना ने स्थिति को बदला है। इसके तहत सोलर पंपों की मदद से सिंचाई की जा रही है, जिससे किसान साल में 3 बार फसल उगा पा रहे हैं और उनकी आय में बड़ा इजाफा हुआ है। पहले जहां किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर थे, अब वे पूरे साल खेती कर पा रहे हैं। त्रिपुरा में यह योजना ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ट्रेडा के द्वारा लागू की जा रही है। ट्रेडा के महानिदेशक देवव्रत शुक्लदास के अनुसार अब तक राज्य में 5,000 से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना में सब्सिडी का भी खास प्रावधान है। कुल लागत में से 50% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, 30% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। त्रिपुरा में यह हिस्सा बढ़ाकर 40% कर दिया गया है और किसान केवल 10% हिस्सा खुद चुकाते हैं। राज्य सरकार किसानों को 70 मीटर तक बोरवेल खुदवाने का खर्च भी देती है। इस योजना की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 19,000 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 10,000 को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर आवेदन आकांक्षी आदिवासी क्षेत्र जैसे गंगानगर, सिलाचड़ी और कल्याणपुर से आए हैं। जिन किसानों की जमीन खेती लायक नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट लगाकर त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड TSECL को बिजली बेच सकते हैं। इसके लिए 25 साल का अनुबंध किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रिड से जुड़े पुराने पंप है, उन्हें भी अब और ऊर्जा पर आधारित किया जा रहा है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो रही है। सोलर पैनलों की उम्र 25 साल होती है और योजना के अंतर्गत 5 साल तक मुफ्त रख रखाव भी मिलता है। इतना ही नहीं, अगर पैनल से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है तो किसान उसे ग्रिड में बेच सकते हैं। पीएम कुसुम योजना न केवल किसानों को विश्वसनीय सिंचाई सुविधा और बेहतर आमदनी दे रहे हैं, बल्कि यह एक स्वच्छ और टिकाऊ कृषि व्यवस्था की ओर से भी बड़ा कदम है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए त्रिपुरा से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट।
त्रिपुरा से अब हमारी यात्रा चल चुकी है नागालैंड की तरफ। नागालैंड राज्य में पीएम श्री योजना के तहत एक खास पहल सुनने में आई है। पीएम श्री योजना के बारे में अगर पहले हम चर्चा करें तो ये वो योजना है जिसमें भारत के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन विद्यालयों को इस योजना के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके बल्कि व्यावहारिक शिक्षा मिल सके और उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हों। तो नागालैंड के एक छोटे से गांव में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत एक खास पहल की गई है। विद्यार्थियों ने खुद के ही प्रयास से एक किचन गार्डन की शुरुआत की है। 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ये पहल एक खास पहल इसलिए है क्योंकि किचन गार्डन में विद्यार्थी खुद सब्जियां और वनस्पतियां तैयार करते हैं, जिससे उन्हें पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। और साथ ही मिड डे मील जैसी योजना में भी इन सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस पहल से विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति सजग और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में भी मदद मिल रही है। तो आइए हमारी संवाददाता असोनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं और जानते हैं कि पीएम श्री योजना के तहत किचन गार्डन की ये योजना किस तरह से छोटे से गांव के एक विद्यालय से पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन रही है।
यह कक्षा 6 से 10 तक की विद्यार्थियों ने मिलकर एक किचन गार्डन तैयार किया है, जहां वे सब्जियों जुटाते हैं और साथ ही टीम वर्क, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी सिखाते हैं। इस पहल की शुरुआत इस साल हुए थे। विद्यार्थियों को 3 समूह रेड, ब्लू और ग्रीन हाउस में बांटा गया है। हर समूह को एक एक बाग सौंपा गया है, जिससे वे अपनी शिक्षकों की देखरेख में संभालते हैं। सरकार की योजनाओं से संयोग मिलने के कारण ये प्रयोगात्मक शिक्षक का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। इस प्रयास में शिक्षक भी पूरी तरह शामिल रहते हैं, जिससे स्कूल का हर व्यक्ति जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। इस बगीचे में मकई, कद्दू, सोरन जैसी मौसमी सब्जियों उगाई जाती है। इन सब्जियों का उपयोग स्कूल के मिड डे मील योजना में भी किया जाता है, जिससे बच्चों को ताज़ा और पौष्टिक भोजन मिल पाता है। सभी समूह मिलकर आप एक नया हर्बल गार्डन भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें औषधि पौधों उगाए जा रहे हैं। इस तरह ये बगीचे न केवल पर्यावरण के समझों का बढ़ाया जा रहे हैं, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भरता भी सिखाई जा रही है। जब फसल पक जाता है तो उसके निकले हुए बीज को अगली फसल के लिए जमा करके रख लिया जाता है। इसे बच्चों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की भावना मजबूत होती है। पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल वोखा गांव की छात्र चिचनबिनी ए ऑडियो ने बताया कि ये बगीचा अब स्कूल के परंपरा कैसे बन चुका है।
Hello everyone, my name is Chijambini Eotio from Standard 10, PM Street Government High School, Wukha Village, Nagaland. Today I am excited to share my experience about my school Green Garden, which was introduced this year in 2025. The purpose of our Green Garden is to promote environmental sustainability, eco-friendly gardening and improve our nutrition through school grown produce. More importantly, it gives us hands-on experience in cultivation and helps us learn teamwork and collaboration. Our garden is divided into three plots, red, blue and green, each taken care of by our schoolhouses, including both students and teachers. The three houses compete to take best care of our respective plots. This healthy competition encourages us to give our best and take pride in our work. What I love most is that the garden is not just about planting, it's about learning by doing. We have gained knowledge about plants, nutrition and gardening practices, and we have built stronger bonds with our schoolmates and teachers. The best part is harvesting and enjoying the food we have grown ourselves. It is a proud and joyful moment for all of us. I want to thank our assistant headmistress and all the teachers for starting this wonderful initiative. The Green Garden has truly made our school life more meaningful and memorable. Thank you.
जहाँ केवल उपचार नहीं उगाते बल्कि जीवन के लिए प्रयास और सोच भी विकसित होती है। जून 2025 में स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों ने इस बगीचे का दौरा किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से मैं असुन्यो।
सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत चोला और डोकलाम जैसे स्थानों को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला गया है। भारत रणभूमि दर्शन योजना क्या है और किस तरह से डोकलाम जैसे क्षेत्रों के सामरिक महत्व को पर्यटकों को भी दिखाया जाएगा इस योजना के तहत, आइए इस योजना के महत्व के बारे में हम अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से जानते हैं।
भारत रणभूमि दर्शन योजना के तहत डोकलाम को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जहां 8 साल पहले भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ था। ये जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी गंगटोक से करीब 70 किलोमीटर दूर है। दूसरी ओर चोला अपनी खूबसूरत जगह और समृद्ध विरासत के लिए इतिहास प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। सिक्किम सरकार और भारतीय सेना अगले महीने के अंत तक दोनों स्थानों को पर्यटकों के स्वागत के लिए विकसित कर रही है। कठिन भूभाग और खराब मौसम के बावजूद सिक्किम के ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटकों के स्वागत के लिए पार्किंग स्थल, शौचालय और रेस्टोरेंट का निर्माण जारी है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
देखा गया है कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तो कुत्ते दूसरे जीवों में मानव के लिए एक वफादार साथी के रूप में साथ निभाते आए हैं। मणिपुर का एक जिला है युखरूल और यहाँ की एक जनजाति तंगफूल है और तंगफूल जनजाति भी पारंपरिक तौर पर एक खास नस्ल के कुत्ते पालती आ रही है। ये कुत्ते इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये ज्यादा संवेदनशील होते हैं तुलनात्मक तौर पर, और इनकी गंध सूंघने की क्षमता, शिकार करने की क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र और संवेदनशील होती है, और इसीलिए अब इन कुत्तों का सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल करने के बारे में सोचा गया है। असम राइफल्स ने एक विशेष पहल की है जिसमें जोरहाट के डॉग ट्रेनिंग सेंटर में टंगफुल जनजाति के द्वारा पाले जाने वाले इन कुत्तों को शामिल किया जा रहा है, और इस पहल से न केवल इस विशेष नस्ल के कुत्तों को संरक्षण मिलेगा बल्कि सुरक्षा और सर्च ऑपरेशंस में भी इन कुत्तों का खास इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इम्फाल से हमारे संवाददाता जेजी थॉकचोम ने ये खास रिपोर्ट भेजी है, आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं।
तांखुल सोफा या तांखुल हाउफा मणिपुर के उखरुल जिले में पाए जाने वाला एक शिकारी कुत्ता है, और यह एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल के कुत्ते हैं जो बहुत ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों में रह सकता है। तांखुल समुदाय और तांखुल सफा के बीच का रिश्ता अनादि काल से लोक कथाओं के माध्यम से जाना जाता है, और यह कुत्ता तांखुल संस्कृति का एक हिस्सा है। आजकल तांखुल हाउफा की शुद्ध नस्ल केवल उखरुल जिले के आंतरिक भागों में ही पाए जाती है। शुद्ध नस्ल की तांखुल हाउफा रखने और विकसित करने के लिए उखरुल जिले के तैनेम ग्राम प्राधिकरण ने 2021 में तैनेम गांव में चार पहाड़ियों को निषिद्ध भूमि घोषित किया, और पिछले वर्षों में तांखुल हाउफा की शुद्ध नस्ल की आबादी बढ़ गया। इसके अलावा प्रामाणिक नस्ल को उखरुल जिले के फुंगचियम गांव में सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। हाउफा कुत्तों की असाधारण योग्यता और सेवा क्षमता को मान्यता देते हुए हाल ही में असम राइफल ने असम के जोरहाट स्थित अपने कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र के लिए इनकी खरीद शुरू कर दी है। हाउफा अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार है और इसे रसक कुत्ता भी माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के पूर्वोत्तर डायरी से बात करते हुए तांखुल सफा या हाउफा के शुद्ध नस्ल के संरक्षण में काम करने वाला श्री ओम्स ने कहा कि हाउफा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, जिसके कारण यह विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है और अत्यधिक मांग है। उसने कहा,
Tangkhul are considered to be very rich in culture. Tangkhul's animal companionship is also one of the culture among Tangkhuls. In this human animal companionship, this Safu is considered as the companion of the Tangkhuls. There is one song known as Miwula, which is translated as Songs of Origin. In this Songs of Origin, the singer of the song says that when the Tangkhuls first came from the Burma, they came along with the Safu. For a Tangkhul warrior, his armor or his weapon is incomplete without a Safu. For a hunter, he is a partner. Starting from his physical structure, it is totally different from other breed. Comparing with other dog breed, this Safu has a very short leg. It has extra tuclos. Some Safu will be having black marking in the tongue.
उखरुल जिले के ग्रामीणों ने संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए और तांखुल हाउफा के अद्वितीय गुण को देखते हुए इस कुत्ते के नस्ल का संरक्षण की महत्व को महसूस किया है। इसके अलावा हाल ही में सैन्य उद्देश्यों के लिए तांखुल हाउफा के नामांकन करने के बाद यह आशा की जाती है कि लोग हमारी स्वदेशी नस्ल के कुत्तों की मानवर को पहचानेंगे। आकाशवाणी समाचार पूर्वोत्तर दायरे के लिए इम्फाल से मैं जजे थॉकचोम।
हम आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृति और परंपरा में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका रही है, और विशेष रूप से हम सभी ने मेघालय की जनजातियों के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर महिलाएं सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हमेशा से ही सशक्त रही हैं, और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की विभिन्न वर्तमान योजनाओं से महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता दी जा रही है, और वे अब पूर्वोत्तर राज्यों में समाज और परिवार का संचालन कर रही हैं। तो आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को उसके नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है जो इसे बाकी क्षेत्र से अलग बनाती है, वो है यहाँ की महिलाओं का सशक्तिकरण। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं केवल घर की सीमाओं तक नहीं है, वे समाज, परिवार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व हर क्षेत्र में सक्रिय और सक्षम भूमिका निभा रही हैं। ये क्षेत्र नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच महिलाएं सेतु बन चुकी हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में महिलाओं को पारंपरिक रूप से विशेष सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं। मेघालय जैसे राज्यों में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, जहां संपत्ति का उत्तराधिकार सबसे छोटी बेटी को मिलता है और विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर में रहता है। इस परंपरा ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया है। वे न केवल घर की व्यवस्था करती हैं, बल्कि व्यापार, खेती और सामाजिक निर्णयों में भी अग्रणी रहती हैं। शिलांग और इसके आसपास के बाजारों में बड़ी संख्या में दुकानों का संचालन महिलाएं करती हैं। वे उत्पाद तैयार करती हैं, बेचती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। मिजोरम की मिजो जनजाति की महिलाएं भी पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प में दक्ष हैं। वे अपने हाथों से बने उत्पादों को बेचकर आजीविका अर्जित करती हैं और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नागालैंड की अंगामी और एओ जनजातियों में महिलाएं खेती, पशुपालन और घरेलू कारीगरी में भाग लेती हैं। समय के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है और वे पंचायतों तथा समुदायों के निर्णयों में आवाज उठा रही हैं। त्रिपुरा की जनजातियों जैसे रिंग, चकमा और लुशाई की महिलाएं पारंपरिक बांस उत्पादों और हथकरघा सामग्री के निर्माण में पारंगत हैं। इनके बनाए उत्पादों के स्थानीय बाजार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच है। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी महिलाओं का चावल की खेती में महत्वपूर्ण योगदान है। वे खेत में काम करने से लेकर फसल बेचने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाती हैं। समुदाय की संपूर्ण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिक्किम में महिलाएं ऑर्गेनिक खेती में आगे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है, जिससे वे बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार कर रही हैं और अपने उपज को ब्रांड बनाकर बेच रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि संस्कृति और परंपराओं में भी केंद्र में हैं। मणिपुर की रास लीला नृत्य परंपरा, जिसमें महिलाएं श्री कृष्ण और राधा की भूमिका निभाती हैं, उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। नागालैंड में हर वर्ष मनाया जाने वाला हॉर्नबिल उत्सव राज्य की विविध जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चित्रण करता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा, गीत संगीत और खान पान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ये महिलाएं त्योहारों की आयोजक भी होती हैं, कलाकार भी और संस्कृति की रक्षक भी। मेघालय में पर्वों के दौरान महिलाएं पारंपरिक ढोल बजाने, वाद्य यंत्रों पर लय रचने और पारिवारिक पकवानों की व्यवस्था संभालने में माहिर होती हैं। उनकी उपस्थिति के बिना कोई पर्व संपूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह मिजोरम का चपचरकुट, सिक्किम का लोसुंग और अरुणाचल का सोलुंग उत्सव महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। इन सांस्कृतिक पर्वों में महिलाओं की भागीदारी केवल परंपरा निर्वाह की नहीं है, बल्कि वे अब इन आयोजनों की योजनाकार, प्रबंधक और प्रस्तोता भी बन चुकी हैं। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता दोनों बढ़े हैं। अब वे केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासन, राजनीति, खेल और उद्यमिता में भी आगे आ रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महिला शक्ति केंद्र, स्टैंड अप इंडिया और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के अंतर्गत असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हजारों महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का अवसर मिला है। इन प्रयासों से महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है और उनका जीवन स्तर उच्च हुआ है। मेघालय सरकार की क्लस्टर विकास योजना और मणिपुर की स्टार्टअप योजना में महिलाओं को विशेष स्थान मिला है। वे अब उद्यमिता की ओर भी अग्रसर हो रही हैं, स्वयं की इकाइयां स्थापित कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नई पीढ़ी की महिलाएं अब न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों, मीडिया, विज्ञान और प्रशासन में भी आगे बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अपने परिवार की रीढ़ हैं, बल्कि समाज की शक्ति भी हैं। वे अपनी परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाकर एक नई दिशा और पहचान रच रही हैं। इनके सशक्त और संतुलित नेतृत्व से ये क्षेत्र विकास की ओर लगातार अग्रसर है।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।